यही जगह है ना?
हाँ बिल्कुल, यही जगह है।
घंटी बजाओ।
कौन है?
माफ करें, दरवाजा खोले जरा।
कौन है?
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
सलाम अलैकुम, क्या हाल है?
आप जी फरमाइए। हम लोग जनाब एहतिशाम की तरफ से आए हैं, आपसे मिलकर कुछ बातें करनी हैं, कुछ मसले हल करने हैं।
हमें कोई बात नहीं करनी है, अदालत जाएंगे, कानून जो कहेगा वही मानेंगे।
जनाब आप इससे कहीं ज्यादा अकलमंद हैं कि आए हुए मेहमान के मुंह पर दरवाजा बंद कर दें।
मेरे भाई हम घर में आएंगे, एक साथ चाय पियेंगे, थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, इससे कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। होगी क्या? डरो नहीं, नुकसान में नहीं रहोगे।
नुकसान उठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जरा रुकिए, सुनो मेहमान आए हैं, आ जाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया, आओ।
आइए आइए,
आप आइए,
तशरीफ लाइए, आइए चलिए ऊपर।
दरख्वास्त है आपसे, आप चलिए।
या अल्लाह।
जी
या अल्लाह, आइए तशरीफ लाइए।
जी जरूर।
या अल्लाह, अंदर आ जाइए।
जी
यही उतार देते हैं।
खुश आमदीद।
देखिए हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते।
आइए बैठिए, खुशामदीद। बेटी मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ।
हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते।
नहीं, कोई बात नहीं, पुलिस पूछताछ के लिए यहाँ आई थी। अगर आपके साहबजादे ने यह सोच रखा है कि जो दिल में आया करेगा और फिर भाग खड़ा होगा तो गलत सोचा है। पार्टी में एक आदमी की मौत हो गई, पार्टी रचाने वाला भी आपका ही बेटा था।
खुदा उस पर लानत करे। देख रहे हैं जनाब, हम रोटी जुटाने के लिए सख्त भागदौड़ कर रहे हैं और ये बेवकूफ आदमी हर दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है।
देखो मेरे अजीज दोस्त, जो आदमी इस पार्टी में मरा है उसके घर वालों से हम मिले हैं, उसका मसला हमने निमटा लिया है। अब रह जाता है आपकी साहबजादी का मसला, तो हमें क्या करना है आप इस बारे में बताइए हमें।
आप नहीं, आपके साहबजादे आए, लड़की से निकाह करें और चले जाएं।
मेरे भाई, ये नशेबाज आदमी 10 लड़कियों से शादी करने वाला था, हमने इसी तरह से जाकर उसके गुनाह पर पर्दा डाला।
हम लोग तो उनके मुलाजिम हैं, वो हमारा बेटा नहीं है। आप ये बताएं कि उस लड़के से आप क्या चाहते हैं, ये बात किसी तरह से यहीं पर खत्म कर दें।
इस गंदगी के ढेर के पास क्या है जो मैं चाहूंगा उससे? उससे कुछ नहीं चाहिए। बेटी चीमा, ये लोग कैवान एहतिशाम की तरफ से आए हैं, आप ही बताइए।
सलाम।
सलाम।
सलाम बेटी।
वो खुद क्यों नहीं आया? उसने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? उसने क्या सोचा कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी? ये उसकी गलत फहमी है, उसके घर का नंबर निकाल लिया है मैंने, बड़ी मुश्किलों से एक्सचेंज से घर का एड्रेस भी निकाल लिया है। जैसे भी होगा ढूंढ निकालूंगी, छोड़ूंगी नहीं, बेमुरौवत मंगेतर है वो।
मेरी बेटी, मैं मानता हूँ वो कसूरवार है, तुम सब चीजों से पहले अपने वालदैन या उसके वालदैन को इस बारे में बता सकती थी ना।
उसने मुझे शादी का वादा किया था, जब भी मिलने आता था नए नए मॉडल की गाड़ियां लेकर दरवाजे पर आया करता था, सभी सोचते थे वो मेरा शौहर है। मैं उसके बारे में अपनी माँ से बात करना चाहती थी ताकि अम्मी बाद में अब्बा से बात करें।
देखो बेटी, ये बच्चा नाजायज कहलाएगा, तुम दोनों कोड़े तो खाओगे ही, उसके अलावा किवान उस बच्चे को और तुमसे शादी को हरगिज कबूल नहीं करेगा।
क्यों, मुझ में क्या कमी है आखिर?
उसका बाप अरबपति आदमी है बेटी, तुम खुद ही कह रही हो कि हर दूसरे हफ्ते नई नई गाड़ी लेकर आया करता था, तो फिर वो तुमसे शादी करेगा? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक ने आकर ये दावा किया कि उससे निकाह किया है, वो अपनी बात साबित नहीं कर सकी। तुम तो कानूनी और शरई भी नहीं हो बेटी।
उसने कई मर्तबा मुझसे कहा कि ये दुनिया बेवफा है, मेरा आशिक है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इस तरह की बातें की उसने। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं तो मेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, आपको पता नहीं मैं भी उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
माफ करना बेटी, क्या तुम कोई नशा करती हो?
मेरी बेटी ऐसा कोई नशा नहीं करती।
अगर कोई 2-3 महीने किवान के साथ रहे तो इन चीजों का आदि हो जाता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे।
तो कहा कि तुम जबरदस्ती गले
पड़ी। गलत बोला है उसने, मैं उसके गले पड़ी थी या वो मेरे गले पड़ा था? जब भी आता वो मेरे लिए तोहफा लेकर आता, कहता गरीब और अमीर की शादी फिल्मों में हुआ करती है, लेकिन हम लोग सचमुच में ऐसा करने वाले हैं, ऐसा कहा उसने।
वो एक नशेबाज आदमी है, उसका बच्चा भी मुलव्वज़ होगा, और तुम जब उससे मिली थी उससे पहले तुमने भी शराब।
मैंने कहा ना, मेरी बेटी कोई लत नहीं पालती।
देखिए जनाब, उनकी गिरफ्तारी की फाइल में लिखा हुआ है कि उन्होंने उस रात शराब भी रखी थी और काफी पी रखी थी, नशावर चीज भी ले रखी थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, अब बताइए
क्या सच कह रहे हैं? इसको धोखा दिया है। इस उम्र की लड़की को क्या पता कि शराब क्या होती है और नशा क्या चीज है? उस भेड़िए के चक्कर में पड़ गई और धोखा खा बैठी।
हम भी तो यही कह रहे हैं, अभी दोनों ही जमानत पर आजाद हैं, आपस में शादी नहीं हुई है, लड़का भी बाहर मुल्क जा रहा है, ये रह जाएगी अपने इस बीमार व नाखिस और नाजायज कहे जाने वाले बच्चे के साथ।
सारा खर्चा मैं महरिए के उनवान से हासिल कर लूंगा और आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, ये रहा एडवांस। कोड़े की सजा भी शराबखोरी की वजह से दोनों को भुगतनी पड़ेगी, ताकि फिर दोबारा ऐसा काम न करें। रह जाएगा मसला बच्चे का, तो उसको भी हल कर लेंगे, बच्चे का मसला भी क्लिनिक में हल हो जाएगा, बाकी की रकम भी उनसे ले लूंगा। ये रख लो। ये क्या है? देखो मेरे भाई, अभी बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी साहबजादी किसी कैवान एहतिशाम नामी शख्स को जानती पहचानती नहीं है और कोई शिकायत भी नहीं है, एक गलत फहमी थी जो अंजाम पाई और इत्तेफाक से दोनों ही पार्टी में शरीक हुए, लिहाजा एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है।
आपका जो दिल में आ रहा है खुद ही गढ़ रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा?
चुप हो जा बेशर्म लड़की, इस नाजायज बच्चे को भी खत्म कर डाल।
ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, क्या समझते हैं कि थोड़े से पैसे देकर जान छुड़ा लेंगे?
बाकी की रकम भी इस बच्चे का मसला हल हो जाने के बाद मैं लेकर आप लोगों को दे दूंगा, और कोई शर्मिंदगी नहीं।
फिर उसने मुझसे जो शादी का वादा किया है उसका क्या होगा?
सड़क पर की जाने वाली शादी अगर अंजाम भी पा जाए तो उसको दबाव नहीं है, जबकि ये तो अंजाम तक भी नहीं पहुंची है।
देखो बेटी, गरीब घर की बेटी की अमीर घर के बेटे या उसके बरखिलाफ होने वाली शादी हिंदुस्तानी फिल्मों में होती है। तुम धोखा खा गई मेरी बच्ची, अगर ये भी नहीं लोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम सारी जिंदगी उसके पीछे भागती रहोगी।
अगर ईसाई होती या यहूदी भी होती, कोई भी चर्च या गिरजाघर या दुनिया का कोई भी मैरिज ब्यूरो बच्चे को बगैर शादी के जायज नहीं मानता है। मेरी बात नहीं मानती तो किसी वकील से पूछ कर देख।
देखो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को दौलत की लालच नहीं है, लेकिन शादी ब्याह के भी कुछ उसूल होते हैं। क्या कोई किसी जबान के वादे या बात पर अपनी इज्जत आबरू और अपनी इज्जत को इस तरह दांव पे लगाता है? कल एक गाड़ी आपके पास भेजूंगा ताकि आपको मखसूस क्लिनिक ले जाया जाए। इस क्लिनिक का हमने आपके लिए इंतखाब किया है, सिर्फ अपनी माँ को लेकर आए। जब आप लोगों का काम हो जाएगा तो वही गाड़ी एक दो घंटे के बाद आपको आपके घर छोड़ाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है।
इस बेइज्जती के बारे में क्या बोलूं? इसे मार डालूं तो नहीं होगा, घर के अंदर नजर बंद कर दूं तो नहीं होगा, चिल्लाऊं नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
बहरहाल जो होना था वो हो गया, आप भी अपनी बेटी से बात करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
सब तुम्हारी गलती है।
यहां पर दस्तखत कर दे। यहां पर आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, पैसे का मसला भी मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। अब अगर हमसे कोई और काम नहीं है तो हम जाने की इजाजत चाहेंगे।
आपके आने का शुक्रिया,
हमने आपको तकलीफ दी। आप बेटी पर सख्ती ना करें, लेकिन आने वाले वक्त में भेड़ियों से होशियार रहें।
तो आप ये ख्याल रखें कि मैं कल गाड़ी जरूर भेजूंगा, लड़की के साथ उनकी माँ को भी भेजें।
ठीक है, जरूर।
अब इजाजत दें।
आपको तकलीफ दी, माफ करें।
खुदा हाफिज, सलामत रहें।
माफ करें आपको जहमत दी।
नहीं, कोई बात नहीं।
अच्छा, इजाजत।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ उठाई, जहमत उठाई, शुक्रिया।
खुदा हाफिज। आपका सेहत सलामत।
नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं।
आपका साया सलामत रहे।
खुदा हाफिज।
इजाजत दें। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। सलाम।
सलाम मैडम।
शेर या लोमड़ी?
हम लोमड़ी कब थे?
तुम तो मक्कार लोमड़ी हो।
मैं भी मूछ हूं और बगैर दुम वाला शेर हूं।
लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता अगर यह आदमी केवान को थोड़ा सा मजा चखाता।
ये तो अपनी बेटी को भी सुधार नहीं सकता।
तुमने अपनी गाड़ी को गलत जगह पर पार्क किया है, जाओ जाके सवार हो जाओ। चलो
ठीक है।
पुराना सामान बेचें, पुराना सामान बेचें, पुराना सामान बेचें, पुराना
सामान बेचें। आप उनसे ऐसी बातें कर रहे थे जैसे हमने उनसे उधार लिया है। मैं उन कमीनों को अच्छी तरह से जानती हूँ।
चलो बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
सलाम।
सलाम बेटी।
सलाम।
खुश आमदी।
कैसे हैं आप?
शुक्रिया। तकलीफ उठाई।
सलाम मरियम मैडम।
सलाम।
ये तुम्हारे लिए है और जो कुछ के हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है।
शुक्रिया तकलीफ उठाई जो यहाँ आए, खुश आमदीद।
माफ करें, बाहर होशमंद कौन है?
बाहर मैं हूँ।
आप हैं? कोई मिलने आया है आपसे?
माफ करें, कौन है?
पुलिस वाले हैं।
ठीक है, मैं भी आता हूँ।
परेशान मत हो, मुझसे भी बहुत पूछताछ हो चुकी है।
या तो डॉक्टर पूछताछ करते हैं ताकि लोगों की हालत बेहतर हो सके, या पुलिस वाले पूछताछ करते हैं ताकि दूसरों की हालत उनकी तरह ना हो।
ठीक है, फिर मैं आती हूँ।
चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ।
ठीक,
ज्यादा गैरत मत दिखाओ, पुलिस खातून है।
फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
मुर्तजा बेटे, जरा इस डब्बे को खोलो।
अरे वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए, इसको मैं खुद ही खा लूं या फिर मरियम मैडम को खिला दूं?
नहीं, तुम ही खोलो और मुझे भी मेरा हिस्सा दे दो। मरियम तो खा नहीं सकती ना।
मुझे इजाजत दें, मैं लॉबी में जा रहा हूं, कोई इंतजार कर।
मैं इसे जरा खोल लूं फिर तुम्हारे पास आता हूं।
माफ करें,
मैं भी चलता हूं, मेरा हिस्सा भी रखना।
ठीक है ठीक है। ये कितना टाइट है खुलने में।
उन सभी लोगों को जिन्होंने ये एक्सीडेंट देखा है हमने बुलाया है। कुछ चीजें मरियम ने भी बताई हैं, अलबत्ता उसे बस वही याद है जब उस पर हमला हुआ। ये तो बताओ, मरियम का एक मंगेतर भी था कि जिसे मरियम ने मना कर दिया था?
जी हाँ।
और वो यहाँ भी आया है?
जी हाँ आया है। शायद आपको ये बात मालूम होगी कि वो मंगेतर मेरा भाई और खुद मरियम का चचाजाद भाई
हाँ,
है।
ये मरियम ने बताया है।
माफ करें, मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर मुमकिन हो तो यूनुस से पूछताछ ना करें, क्योंकि मैं डरती हूँ कि कहीं रिश्ता और बिगड़ ना जाए।
तुम परेशान ना हो, हमें थोड़ा बहुत अपना काम करना आता है।
माफ करें, मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहती थी।
सलाम।
सलाम।
ये मरियम की दोस्त आरजू है।
हाँ ये मेरी भी दोस्त है, हमने काफी बातें की है, इन्होंने बहुत सी मालूमात भी दी है। लैपटॉप पर हमने मुजरिम का स्केच भी तैयार कर लिया
जी। अगर कोई आपको काम नहीं है तो क्या मैं मरियम के पास जा सकती हूँ?
हाँ हाँ जरूर जाओ, बस अगर तकलीफ ना हो तो मरियम के पापा को भी मेरे पास भेज देना, मुझे जरा उनसे काम है।
ठीक है, मैं उन्हें भेज दूंगी। खुदा हाफिज।
शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा तो बाहर मेरा दिल ये चाहता है कि हम लोग जरा ज्यादा एक दूसरे को पहचाने। बहरहाल मरियम तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारे साथ ज्यादा खुलकर बात करती होगी। मरियम के साथ जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक समाजी तहफ्फुज़ से है। एक तालिबे इल्म लड़की पर यूनिवर्सिटी के सामने एसिड फेंका गया है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब किसी दूसरी लड़की को इसका निशाना बनाया जाए या नहीं, या कब कोई अपनी बिनाई खो दे। तुम्हारा तआवुन हमारी इस बात में मदद कर सकता है कि दूसरी लड़कियों का तहफ्फुज़ फरहाम कर सके। इसलिए तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे साथ खुलकर बात करो और जो कुछ के जानती हो मुझे बताओ।
पता चला कि ये जानबूझकर हुआ या गैर इरादी
तौर पर? मैं इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल नहीं सोचता। अरे तुम आ गई। हाँ तो ये बताओ, औरतों के माहिर डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ कहा क्या?
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ध्यान देना होगा कि हाथ का जख्म उभर ना आए। एंटीसेप्टिक और सर्जरी के डॉक्टरों ने आपस में मीटिंग की है।
खुदा का शुक्र है।
क्या आप चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल ले?
नहीं यूनुस बेटे, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में देख लेंगे। देखना होगा कि दोनों डॉक्टर की राय क्या होती है, वरना प्राइवेट अस्पताल में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
होशमंद साहब
जी,
आपसे काम है।
किसको?
पुलिस वाले हैं, उन्हें कुछ पूछना है आपसे।
ठीक है, माफ करना।
तशरीफ लाइए।
मैं भी आता हूँ।
मैं भी आऊँ आपके साथ?
नहीं बेटे यूनुस, अभी आता हूँ।
नहीं बेटे नहीं।
सलाम सलाम
सलाम बेटी,
सलाम।
कैसी हैं आप?
अच्छी खबर हो रही है तुम्हारी। कैसी हो मरियम, तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ।
अभी तबीयत कैसी है?
शुक्रिया, मैं ठीक हूँ।
खुदा का शुक्र है। कैसी हो, ठीक हो?
क्या तुम डॉक्टर हो?
मैं तुम्हारा वक्त नहीं
लूंगी। नहीं कोई बात नहीं।
मैं कह रही ठीक है, ये लोग जो अस्पताल में बीमारों से मिलने के लिए आते हैं, मुझसे भी लोगों को इधर मिलने के लिए भेज दो, मेरी तो इज्जत ही चली गई।
ये लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो सब भी तुम्हारे अपने ही हैं।
हाँ ये तो है, लेकिन
सलाम सलाम सलाम।
वालेकुम सलाम
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 सलाम।
आ देखो तो मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ है।
सलाम।
मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है?
शुक्रिया, बहुत बेहतर हूं।
मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या जंगल राज मचा है कि कुछ लोग आए, एक लड़की पर एसिड फेंका और चलते बने।
इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा।
अरे ये लोग क्या पकड़ पाएंगे मेरी भाभी, वो लोग अब गए कहाँ पकड़े जाएंगे?
वो लोग आदमियों से भाग सकते हैं लेकिन खुदा से भागकर कहाँ जाएंगे?
लोगों से बचकर भी नहीं जा पाएंगे डॉक्टर, वो पकड़े जाएंगे।
ये तो बताएं मेरी भाभी कि आप लोग फोन करके हमें बता नहीं सकते थे? क्या ये खबर किसी दूसरे से सुननी चाहिए थी?
ये तो बताओ मेरी बहन, वो अजनबी आदमी कौन था जिसने कि तुम्हें खबर दी?
बाखरी साहब है, उस कंपनी के मालिक जिसमें यूनुस काम करता है। उन्होंने फोन किया था कि यूनुस की बहन की खैरियत और हाल दरियाफ्त करें। मैं भी उस वक्त बहुत हैरान और परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।
खुदा भला करे जनाब बाखरी का, जो कि हमारे खानदानी रवाबित को बहाल रखे हुए, वरना हानिया बहन के बकौल खानदान वालों के लिए।
देखो उन लोगों ने इस लड़की का क्या बुरा हाल किया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लोग रात में चैन से सोते कैसे होंगे। मैं तो वाकई बहुत हैरान हूँ।
अरे ओ स्मार्ट आदमी, तुम भी हैरान होना जानते हो?
हाँ बिल्कुल।
अच्छा तो तुम भी जानते हो?
परी थोड़ा मजाकिया है।
तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
मरियम को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए होते, इस तरह के लोगों का सामना तो नहीं करना पड़ता।
तुम लोगों ने किसी प्राइवेट अस्पताल में इसे क्यों नहीं एडमिट किया?
फूफी जान, ये अस्पताल तो मरियम के काम करने की जगह है ना।
सलाम सलाम
सलाम
सलाम।
कैसे
हैं
आप लोग? सलाम। आप कैसे हैं? तशरीफ लाएं।
सलाम मरियम, कैसे हो तुम?
सलाम।
तुम ठीक तो हो? उनकी फाइल तो लाओ।
डॉक्टर साहब मेरा ये हार्ट कब खोला जाएगा?
जल्दी खोल दिया जाएगा, आप यही दवाएं जारी रखें।
इन्हीं दवाओं को?
हाँ हाँ।
खुदा का शुक्र है कि चेहरा सही और सालिम रह गया।
अगर ये अपने हाथ से चेहरे को ना ढकती तो इनका चेहरा हाथ से भी ज्यादा बुरी तरह से जल गया होता। चेहरा तो बहुत हसास हुआ करता है।
लेकिन माफ करें डॉक्टर साहब, नकाब तो एसिड के असरात नहीं रोक सकता ना।
क्योंकि मोहतरमा उनके नकाब का कपड़ा मोटा था, आस्तीन थी, हाथ था, ये सब मुअस्सिर है ना।
जी हाँ।
ठीक है लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों है बताइए।
अच्छा ठीक
है, जाइए। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप सब बाहर जाइए।
अच्छा मरियम बेटी, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़,
ख्याल रखना अपना। मेरी भाभी खुदा हाफिज़।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ आने के लिए तकलीफ
उठाई। शुक्रिया।
ए स्मार्ट आदमी, मैं इशारा समझ गई जो तुमने कहा, डॉक्टर मैडम की वजह से मैं कुछ नहीं बोली।
फरीदुन खान चलो चले, बहुत बहुत शुक्रिया।
ठीक है हम भी चलते जी। शुक्रिया आने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह एक दो दिन में तुम्हें इस वजन से छुटकारा मिल जाएगा।
मुलाकात करने वालों को ये इत्तला दी जाती है कि मिलने का वक्त अब खत्म हो गया है। बीमारों की सलामती के लिए गुजारिश की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल
आओ। तुम लोग चलो चलते हैं, हम बाहर इंतजार करेंगे।
आप सब लोग मेहरबानी करके जरा बाहर चले जाएं।
चलो यहाँ से
आ जाओ,
हम लोग बाहर जाते हैं।
शुक्रिया
शुक्रिया
शुक्रिया, खुदा हाफिज।
ठीक
है हम थोड़ी देर के बाद आते हैं।
आप ठीक तो है ना? अपनी दवाएं वक्त से ले रही हैं?
आजा आजा।
और कोई परेशानी तो नहीं है?
आओ तुम भी आओ।
हाँ डॉक्टर साहब, सभी दवाएं खा रही हूँ।
ठीक है ठीक है, तो इसको जारी रखें।
मेरे पैरों में काफी दर्द होता है।
दर्द हो रहा है तो मैं इंजेक्शन लिख देता
हूँ। ठीक है।
ये बात मेरी समझ से बाहर है कि भाईजान और मेरी भाभी का दिल कैसे माना कि उन्होंने अपनी लखती जिगर को वहां पर एडमिट कर रखा है। अरे उस अस्पताल में क्या कोई किसी का पुरसाने हाल था? ये क्या बात हुई कि मरियम वहां काम करती है? कभी आदमी किसी कूड़े के ढेर में काम करता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो क्या उसे वहीं ले जाएंगे?
और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पर शिकायत करने की? तुम्हें खबर नहीं की गई? तुम्हें इस बात की खबर आकर मिली गई थी ना?
ये बात मैंने कही ताकि वो अहमियत को समझ जाए।
मैं जानता हूँ और ये बात सभी जानते हैं कि हानिया मैडम के लिए सभी चीजें जरूरी हैं सिवाय मेरे।
बस सिर्फ क्या?
बस बस चलो छोड़ो, जाने दो, खत्म करो बात।
ये क्या फरीदून, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
नहीं, आदमी जब इतनी बेरहमी देखेगा तो फिर उसकी तबीयत भला ठीक रह सकती है क्या?
अब तुम खुद को परेशान मत करो, ये दुनिया बेरहम लोगों से भरी पड़ी है।
मैं सोच रहा हूँ कि मरियम का पैर अगर ठीक भी हो गया तो उसके बगल वाले बेड पे जो लड़की थी वो तो उसका दिमाग ही खराब कर देगी। बहुत ही बदतमीज लड़की थी।
बड़ी बदतमीज लड़की थी, मेरा तो दिल कर रहा था कि थप्पड़ मारूं मुंह पर।
सुनो, केवान के मामले में उस लड़की से बात की?
उन्होंने कई मर्तबा फोन किया था, शौकत ने कह दिया कि मैं नहीं हूँ।
दो छोटे छोटे मेहमान लाई हूँ। सिक्योरिटी वाले ने इनके वालदेन को पकड़ रखा है, कहता है कि जब तक ये दोनों वापस नहीं आएंगे उन्हें ऊपर नहीं जाने देगा।
सलाम अजीजम। बहन
तुम ठीक हो?
हाँ, तुमसे मिलने को दिल करता।
मेरी बहन, मेरे पास बैठो। कैसे हो अमीर अली, ठीक हो?
हाँ मैं भी ठीक हूँ।
मरियम बहन, क्या ये वही लड़की है जो गैर कानूनी तौर पर भागी हुई है?
अमीर अली बिल्कुल तुम्हारी तरह है।
हाँ मैं ही हूँ। देखो तो मेरी क्या हालत हो गई है, तुम भी कभी भागने की मत सोचना।
ठीक हो मुतहरा बहन?
तुम्हारा हाथ तो ठीक
हाँ,
है ना?
मेरी प्यारी बहन तुम कैसी हो, ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूँ।
घर में अकेले में क्या करती हो?
अम्मी की मदद करती हूँ, छोटे मोटे काम करती हूँ।
अच्छा, मेरी जगह पर भी अम्मी की मदद करती हो?
हाँ करती हूँ।
शाबाश मेरी प्यारी बहन।
दादी।
बोलो बेटा।
मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप खुद को जहमत दें, समझी?
तुम्हारे लिए भी बुनूंगी, ये मरियम के लिए बना रही हूँ।
मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं राजी नहीं हूँ।
ये तुम क्या कर रहे?
अजीज दादी, मैं इंजीनियर हूँ, कोई बुनने की मशीन नहीं हूँ।
बेटा मैंने तो नहीं कहा था, तुम खुद ही करने लग गए।
हम भी थोड़ा सरगर्म हो गए, पहाड़ थोड़ी ना खोदा है।
तुम लोग उठो और कोई किताब पढ़ना शुरू करो, मेरा काम तुम्हारा वक्त बर्बाद कर देगा।
आपको क्यों बुरा लग जाता है दादी? किसी ना किसी बहाने आपके पास रहने की कोशिश करते हैं फेस टू फेस, वरना किताब, कंप्यूटर और पढ़ाई वगैरह हमेशा तो है ही।
अब तुम लोग उसे छोड़ दो, कल मुझे कोई काम नहीं है, खुद ही कर लूंगी। फिलहाल तुम लोग जूस पियो, मैं खुद ही कर लूंगी। लो पियो।
आपका बेहद बेहद शुक्रिया। ये लो शहजादे।
इन सब में जहमत नहीं।
शुक्रिया।
अरे बेटा, जब अपने बच्चों के लिए काम किया जाता है तो बड़ी खुशी होती है।
वो भी हम जैसे अच्छे बच्चों के लिए।
जाहिर है, वैसे तुम लोग ये ना समझना कि मैं समझी नहीं, आज की रात तुम दोनों में कुछ चल रहा है।
मैं सहन में जा रहा हूँ दादी।
सब लोग समझ जाएंगे। जिसका दिल पाक साफ होगा वो समझ जाएगा।
आखिर किसी एक को तो कहना ही होगा ना।
मैं ढके छुपे लफ्जों में कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। ये काम पापा ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता।
तुम्हारे पापा
मुर्तजा? अरे इसे पहन लो बेटा, ठंडक है हवा में, सर्दी लग जाएगी।
नहीं आप तकलीफ ना उठाएं अजीज दादी, मैं खुद ही आता हूँ।
लो बेटा इसे पहन लो, ठंड ना लग जाए। ठंड ज्यादा है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम लोग भी जल्दी से सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ पाओगे।
जो हुक्म दादी, शबा खैर।
शबा खैर बेटा।
तुम्हारे पापा को अंदाजा नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को मार डाला जाता है, इलाज नहीं किया जाता। इस मुल्क में ऐसा ही होता है, या तो तुम्हारे पास पैसा हो या मौत को गले लगा लो।
इस बात का आपने किस रिसर्च में पता लगाया जनाब प्रोफेसर?
कल मैं अम्मी से बात करके तुम्हारी अम्मी को राजी करूंगा कि मरियम को प्राइवेट अस्पताल में ले जाए।
दुनिया पापा लोगों के हाथ में है, पापा लोग भी अम्मी लोगों के दिलों में है। और मेरी अम्मी कहती है कि इस अस्पताल में मरियम काम करती है और सभी जानते हैं।
तुम्हारी अम्मी गलती पर है, क्योंकि जहां इम्कानात ना पाए जाते हो वहां ना डॉक्टर ना दोस्त ना नर्स ना ही पहचान वालों का कोई फायदा होता है।
मैं अपनी अम्मी की बातों को मानता हूं। तुम भी जरा होशियार रहो, अपना राज खोलते जा रहे हो होशियार आदमी।
हाँ मुझे चौकन्ना रहना होगा। सच कहूं तो इस फरीदून ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता कि ये कुरुश को कैसे जानता है।
तुम्हारे पापा को शक हो गया है लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्यों। तुम्हें कंपनी जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने देखा हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ी।
पैसों की हमेशा जरूरत पड़ती है।
तुमने पैसा पैसा करके मेरा मूड खराब कर दिया। मेरे भाई यूनुस, देखो जो लोग के आज कब्रिस्तान में सोए हैं, 50 बरस पहले इस तेहरान की सारी दौलत उनके हाथों में थी, लेकिन पैसा उन्हें यहां से जाने से रोक नहीं सका। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि हलाल कमाई का पैसा शायद कुछ मसाइल में कारसाज हो पाए।
इस कमबख्त पैसे से पत्थर भी पानी बन सकता है। पैसा हर चीज को जायज बना देता है, ये जायज करने का जरिया है।
ये क्यों नहीं कह देते कि पैसा खुदा है?
बहरहाल जिन लोगों के पास आज पैसा है एक तरह से वो खुदाई करते हैं। अपनी आंखें खोलो मुर्तजा। मैं मरियम से एक बार फिर बात करना चाहता हूं।
अच्छा, क्या तुमने फरीदून खान और कत्ती मैडम से इजाजत ली है?
तंज ना करो।
बहरहाल वो भी पैसे वाले हैं, खुदाई करते हैं, और तुम्हें इन खुदाओं से इजाजत लेनी चाहिए।
इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं।
अभी तुम खुद ये बात नहीं जानते कि किसको चाहते हो और किसको नहीं चाहते।
क्यों नहीं जानता? मैं ऊपर उठना चाहता हूं, बहुत ऊपर।
तो तुम जीना बजीना भी ऊपर उठ सकते हो।
जब तुम अपनी आंखें खोलोगे और इस काम में पड़ोगे तब समझोगे कि जीना बजीना चलने से ऊपर नहीं उठ पाओगे। उसका रास्ता तो बस मिसाइल जैसे उड़ाना।
जीना बजीना भी तेज तेज जाया जा सकता है, 2 जीना 3 जीना एक साथ शायद 4 जीना भी। लेकिन यूनुस मिसाइल की रफ्तार से चढ़ना उसी रफ्तार से गिरना भी हो सकता है। लेकिन जब जीना बजीना ऊपर चढ़ोगे ज्यादातर ये होगा कि 2 जीना नीचे आ जाओगे, फिर तुम दोबारा उठकर ऊपर चढ़ सकते हो।
अगर आगे बढ़ना है तो पीछे होने का भी सोचना होगा, और मैं उनमें से नहीं हूं।
देखो अगर तुम ये सोच सकते हो तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना।
जो होगा देखा जाएगा।
मेरे भाई यूनुस, हाज जलाल होशमंद के पोते, अगर तुम उनके लिए परेशानी खड़ी करोगे तो वो लोग तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे, या खुद ही वो लोग या खुदा। यूनुस, उनका खुदा पैसा नहीं है जो बेअक्ल हो और मुख्तलिफ लोगों के हाथों में हो।
हाँ, तुम अकाउंटेंट के बजाय मुल्ला क्यों नहीं बने?
मुझे डर लगा कि शायद एक मुल्ला को तुम अपनी बहन ना दो। सलाम अजीज दादी।
सलाम बेटे, सुबह खैर।
सुबह खैर दादी, अजान हो गई?
देखो ना बेटा, उजाला हो गया, अजान हो गई, रोटी वालों का तंदूर गर्म है, हलीम वालों ने अपनी दुकान खोल ली है।
जो काम एक ज़ईफ़ा कर सकती है वो तीरो तलवार नहीं कर सकते। आप खुशकिस्मत हैं अजीज दादी, जो सुबह की सफेदी देख पाती हैं।
जवानी में पाक रहना पैगंबरों की रविश है।
हाँ आप ठीक कह रही हैं।
आधी रात को आप लोग शेरो शायरी करने लगे, सो जाए ना।
हम सोए हैं, पर बहुत से ऐसे बेदार लोग हैं जो जाग के भी सोए हैं।
زاد نفس هامه برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.